और दूसरा, जो भक्तगण जप कर रहे हैं कृपया वो क्लास के समय जप ना करें, ध्यान पूर्वक सुने, तभी पूर्ण लाभ की प्राप्ति होती है। और ये जो पेपर हमारे पास बहुत कम पेपर हैं, तो लोग बीच बीच में शेयर कर लें, सबको एक ही जगह पे ना दे दें, कुछ पीछे दें कुछ इधर दें, क्योंकि आज श्रील अभिराम दास ठाकुर जी का त्रोभाव दिवस है, तो आज हम उनके विषय में चर्चा करेंगे। और श्रील अभिराम दास ठाकुर जो हैं वो श्री धाम के अवतार हैं, तो इस पर्टिकुलर भजन में उनका नाम है श्री धाम, तो इसलिए मैंने इस भजन को लिया है। तो कोई अगर मृदंग वादक हैं तो वो कृपया मृदंग बजा सकते हैं, नहीं तो हम लोग करताल में इसको गाएंगे। और आप लोग को बहुत ध्यान पूर्वक सुनना पड़ेगा इस भजन के, क्योंकि यहाँ पे जो हिंदी में जो टाइप किया गया है थोड़ा मिस्टेक है, तो जिस तरह से मैं गाऊंगा उस तरह से ही आप लोग को गाने का प्रयास करना है। हरे कृष्णा। श्री अभिराम दास ठाकुर की। हरि हरि कबे मोरा हरि बे सुदीना, हरि हरि कबे मोरा हरिबे सुदीना, हरि हरि कबे मोरा हरिबे सुदीना, हरि हरि कबे मोरा भजिबो श्री राधा कृष्णा हैया प्रेम धीना, भजिबो श्री राधा कृष्णा हैया प्रेम धीना, हरि हरि कबे मोरा हरिबे सुदीना, हरि हरि कबे मोरा। सुजंत्रे मिसैया गबो सुमधुर ताना, सुमधुर सुजंत्रे मिसैया गबो सुमधुर तान, सुंत्रे आनंदे करीबो दुहार रूप गुण गान, आनंद राधिका गोविंद बोली कांदिया उच्चे स्वरे, राधिका गोविंद भिजिबो सकल अंग नयनेर नीरे, भिजिबो सकल अंग ए बार करुणा करो रूप सनातन, ए बार करुणा करो रघुनाथ दास मोरा श्री जीव जीवन, रघुनाथ दास मोरा ए बार करुणा करो ललिता विशाखा, ए बार करुणा करो ललिता विशाखा, सख भव श्री दाम सुबला दिशाखा, सख भव श्री दाम, ए बार करुणा करो ललिता विशाखा, ए बार करुणा करो ललिता विशाखा, सख भव श्री नाम सुबला दिशाखा, सख भव सब मिली करो दया पुर मोरया, सब मिली करो दया पुर मोर, सब मिली करो दया पुर मोरया, सब मिली करो दया, प्रार्थना करो ए सदा नरोत्तम दास, प्रार्थना करो ए, प्रार्थना करो ए सदा नरोत्तम दास, प्रार्थना करो ए सदा नरोत्तम दास, हरि हरि कबे मोरा हइबे सुदीना, भजी बो श्री राधा कृष्णा हैया प्रेम दीना, भजबो श्री राधा कृष्णा हैया प्रेम दीना, हरि हरि कबे मोरा हइबे सुदीना, हरि हरि कबे मोरा, भजबो श्री राधा कृष्णा हैया प्रेम दीना, जय राधे जयो राधे जयो कृष्णा जयो राधे, जयो रूप सनातन जयो रूप सनातन, रूप सनातन जयो रूप सनातन, जय श्री दाम सुबल जय श्री दाम सुबल, श्री दाम सुबल जय श्री दाम सुबल, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, नीताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नीताई गौर हरि बोल,
हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की शिला बदाम दास ठाकुर की। मैं श्री श्री राधा और कृष्ण की पूजा कब करूंगा, मैं दिव्य युगल के प्यार से कब अभिभूत, प्रेम से कब अभिभूत हो जाऊंगा, हे भगवान हरे वह शुभ दिन मेरा कब होगा, जब एक संगीत वाद्यंत्र पर खुद के साथ मैं खुशी से दिव्य गुल के सुंदर रूपों और गुणों का वर्णन करते हुए मधुर गीत गाऊंगा, जब मैं जोर जोर से ओ राधिका ओ गोविंद कहूंगा, मेरी आंखों से मेरी आंखें गीली, मेरे आंसू मेरी आंखों को गीली कर रहे होंगे और मेरा शरीर भीग जाएगा। हे श्रील रूप गोस्वामी, हे श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, मेरे जीवन और मेरी आत्मा कृपया इस बार मुझ पर दया करें। हे ललिता, हे विशाखा, हे श्रीदाम, हे सुबल और भगवान कृष्ण के अन्य मित्र, कृपया इस बार मुझ पर दया करें। आप सभी मुझ पर कृपा करें और मेरी मनोकामना पूर्ण करें, यह नरोत्तम दास की निरंतर प्रार्थना है। हरे कृष्णा। तो ये बहुत सुंदर भजन हम लोग ने गाया, नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना है। तो आज हम सुबल जी जो है भगवान के जो सखा हैं, उनका चैतन्य लीला में जब वो प्रकट होते हैं तो अभिराम गोपाल के रूप में प्रकट होते हैं, तो आज उनका त्रोभाव दिवस है, तो हम लोग चर्चा करेंगे उनके त्रोभाव के उपलक्ष में। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने, नमस्ते सारस्वते देवीं गौरवाणी प्रचारणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमारे वैष्णव समाज में, ये कहिए हमारी इस पूरी परंपरा में या पूरे ब्रह्मांड में, है ना, एक ऐसे वैष्णव हुए हैं जिनका जन्म नहीं हुआ है, जिनका आविर्भाव नहीं है, केवल त्रोभाव है, मतलब जिन्होंने माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया, वो सीधा ही प्रकट हो गए लीला में। तो नो, भागवतम नहीं, ये प्रभु जी बोल रहे हैं कि आप भागवतम क्यों नहीं ले रहे तो हम भागवतम नहीं ले रहे हैं क्योंकि दो भागवत होते हैं, एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र और एक भागवत भक्ति रस पात्र। एक तो ये बड़ा भागवत है जो हमारे सामने है, जिसमें भक्तों की कथाएं हैं, इसे बोलते हैं बड़ा भागवत शास्त्र। और दूसरे भागवत क्या है, भक्ति रस पात्र, जिसने भक्ति का रस का पान किया है वो कौन है, भागवत। तो अब चाहे हम भागवत के विषय में बोले, चाहे ऐसे भक्त के विषय में बोले जिन्होंने भक्ति के रस का पान किया है, बात बराबर है, ठीक है। तो कभी कभार भक्तगण थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये क्या केवल भागवत का हमको श्लोक नहीं लिया, भक्त का जीवन चरित्र वो पूरा भागवत में होता है। तो यदि कोई व्यक्ति उसे बोलता है तो वो व्यक्ति को भक्ति की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंध के 12वें अध्याय के 46 श्लोक में मैत्रेय मुनि कहते हैं, श्रेत्वत श्रद्धा अभीक्षणम अच्युत प्रिय चेष्टितम भवेद 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 भक्ति भगवती या स्यात क्लेश संशया। और बोलते हैं कि जो कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ, श्रद्धा श्रद्धा मतलब विश्वास के साथ में, श्रद्धा के साथ में, दृढ़ श्रद्धा के साथ में भगवान के भक्त के अच्युत प्रिय, मतलब जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान को बहुत प्रिय हैं, उनको उनके बारे में सुनता है, उनके चरित्र के बारे में सुनता है, तब क्या होता है, भवेद भक्तिर भगवती, भगवान की जो प्रेमा भक्ति है उस व्यक्ति के अंदर प्रवेश करती है, यानी वो भगवान भक्ति के धरातल पे चलता है। और जब भक्ति प्रवेश करती है तब क्या होता है, स्यात क्लेश संशया, सभी प्रकार के क्लेशों का नाश हो जाता है। क्या करने से, केवल भगवत चरित्र को सुनने से, भगवान के भक्ति के चरित्र को सुनने से, उसका गुणगान करने से इतना हो जाता है। तो आप बताइए क्या ज्यादा श्रेष्ठ है, भागवत सुनना या भगवत चरित्र को सुनना, बताइए, दोनों श्रेष्ठ है क्योंकि दोनों में एक ही चीज है। जब आप भक्तों से सुनोगे तो वो क्या सुनाएंगे आपको, भगवान की बातें सुनाएंगे, और भागवत पढ़ोगे तो उसमें आपको भक्तों के विषय में मिलेगा। भगवान भक्तों की महिमा का बोलते हुए नहीं थकते हैं, सही बात है ना, और जो भक्त होते हैं वो भगवान की महिमा कहते हुए नहीं थकते हैं। भगवान चेतन महाप्रभु जब अपने भक्तों का गुणगान करते थे तो उनके पांच मुख हो जाते थे, भक्ते रे महिमा गाए है पंच मुख, भगवान के कितने मुख हो जाते थे, पांच मुख। हम लोग एक कान दो कान से सुनते हैं लेकिन भगवान पांच मुख से
वर्णन करते थे, जब भी किसी भक्त के बारे में चैतन्य महाप्रभु को बोलना होता तो इतने ऐसे बोलते थे कि महाप्रभु 5 मुखों को प्रकट कर लिए हैं। सोचिए, तो यदि हमें भगवान के भक्तों के बारे में सुनना है तो हमें कम से कम 10 कान तो प्रकट करने चाहिए तभी हम लोग पकड़ पाएंगे महाप्रभु को। तो ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो ये है, तो हम लोग श्रीराम अभिराम ठाकुर के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग पहले उनका प्रणाम मंत्र बोलेंगे। हम लोग ये कथा 3 ग्रंथों से हम प्रयास किए हैं इसको बोलने के लिए, चैतन्य चरितामृत से, अभिराम लीलामृत से और भक्ति रत्नाकर ग्रंथ से। तो ये जो श्लोक है ये अभिराम लीलामृत में है, मेरे पीछे पीछे दोहराइए आप लोग। वंदे हम श्री श्री गोपीनाथ महाप्रभुर विजयते यत्र अभिरामो महान गोसाई श्रीयुत पदकमलम मालिनी सहितम शक्त अवतारम सहगन चरणाम्बुजे सदा शरणम इति। हरे कृष्ण। तो गौर गणेश देव दीपिका में शिला कवि कर्णपुर लिखे हैं कि पुरा श्रीधाम नामासीत, जो कृष्ण भगवान की लीला में श्रीधाम थे, श्रीधाम सखा थे या राधा रानी के बड़े भ्राता श्री थे वही, और वो और जो 12 गोपालों में सबसे प्रमुख गोपाल हैं अभिराम धुनो महान। वो अभी चेतन लीला में कौन बन के प्रकट हुए? अभिराम ठाकुर बन के प्रकट हुए। और वो ऐसी बांसुरी बजाते थे त्वात्रष्ट जनेर एव कष्टम उभयी सह कानन काम्य वही सह। इसमें वर्णन करते हैं कवि कर्णपूर्ण गौरगस दीपिका में कि उनके पास इतनी बड़ी बांसुरी थी कि उसमें करीब 18-19 गांठें थी और 18-19 छेद थे, और उनकी उस बांसुरी को उठाने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता पड़ती थी? 32 लोगों की आवश्यकता पड़ती थी, इतनी बड़ी बांसुरी थी। और इसी चीज को भक्ति रत्नाकर में बोला गया है 100 लोगों की आवश्यकता पड़ती थी उसको उठाने के लिए, इतनी बड़ी वो बांसुरी बजाते थे। तो कथा इस प्रकार आती है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब अपने पार्षदों को लेके हरिनाम संकीर्तन को वितरण कर रहे थे पतित आत्माओं को, तो एक एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर हो गए, और भाव विभोर होके महाप्रभु श्रीदाम 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 जोर से चिल्लाने लगे, बहुत जोर से, और रुदन करने लगे। तो आश्चर्यचकित हो गए नित्यानंद प्रभु ने जब भाव अभेश को देखा महाप्रभु के, तो महाप्रभु को गोद में ले लिया और महाप्रभु को देखने लगे कि प्रभु आप किसको पुकार रहे हैं, आखिर ये कौन है? तब बोलते हैं कि सब कृष्ण लीला, सब मेरी इस चैतन्य लीला में आ गए, गौर लीला में आ गए, लेकिन निताई एक व्यक्ति नहीं आया। बोला कौन नहीं आया? बोला श्रीधाम वो अभी भी गुफा में बैठा हुआ है, वो अभी भी ब्रज में है, तुम उसको लेके आओ, उसके बिना गौर लीला में आनंद नहीं आ सकता है मुझे। तो ग्रंथ में ऐसा वर्णन है कि वृंदावन में जब सारे ग्वालवाल लुका छुपी का खेल खेल रहे थे, छुपा छुपी खेलते हैं बच्चे, तो कृष्ण बलराम श्रीराम सब लोग खेल खेल रहे थे, तो श्रीराम ने क्या किया, वो गुफा में घुस गए कि कृष्ण बलराम मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे, और वो गुफा में छुप गए। और यहाँ पे कृष्ण बलराम का प्लान बन गया कि चलो भाई अभी नदिया में प्रचार करना है, नवद्वीप में जाना है, वहां पे प्रचार करना है। तो ये सारे जितने भी थे बालक, जितने भी द्वादश, जितने भी महंत थे, जितने भी पार्षद थे भगवान के ग्वाल बाल, सबको लेके भगवान कहाँ चले गए? नवद्वीप चले गए, और ये श्रीधाम गुफा में ही रह गए तो वो कृष्ण का और बलराम का वेट कर रहे होंगे, कर रहे थे कि कब आएंगे, कब मुझे ढूंढेंगे। लेकिन पूरा युग बीत गया लेकिन कृष्ण बलराम तो आए नहीं, वो तो निताई और निमाई बन गए उधर जाके नवद्वीप में। तो ऐसा हुआ, तब नित्यानंद महाप्रभु महाप्रभु का आदेश पाके वृंदावन आए, और वृंदावन आके उसी गुफा में गए जिस गुफा में वो छुपे हुए थे, कौन? श्रीधाम जी। और गुफा में जब वो छुपे हुए थे तो ये पुकारने लगे श्रीधाम श्रीधाम श्रीधाम,
नित्यानंद महाप्रभु। तो श्रीराम बोले, यार बहुत दिन हो गए मुझे कोई ढूंढ नहीं पाया, लेकिन ये मेरी नाम से कौन पुकार रहा है मुझे। तो बाहर निकले तो देखा, यार ये कौन व्यक्ति है, ये तो कलयुग के साइज का व्यक्ति है, ये तो कोई अपना सखा तो लगता नहीं है, लेकिन इसकी वाणी में इतना आवेश कि मुझे खींच रहा है अपनी तरफ, तो हो सकता है कुछ तो होगा। तो बोला, भाई आप कौन है? तो बोलते हैं, मैं तुम्हारा बलराम हूं, मैं बलाई हूं, बलराम, तुमने पहचाना नहीं मुझे? तो श्री राम हंसने लगे, अरे ये तू बलराम कैसे हो सकता है, तू इतना छोटा और तेरा वो भेस कहां गया, ग्वालवाल भेस, ये क्या बाबा जी फकीरों का भेस बना लिया तुमने? तो बोलते, मैं बलराम हूं, चलो तुम नवद्वीप में चलो। बोला, मुझे फंसाने का प्रयास मत करो, तुम सच में अगर बलराम हो तो ठीक है, पहले तुम मुझे पकड़ के दिखाओ, सखा है ना, तो अगर तुमने मुझे पकड़ लिया, क्योंकि मुझे पकड़ने की शक्ति केवल किसमें है, दाऊ जी में, बस बलराम ही मुझे पकड़ सकते हैं, बाकी तो कोई पकड़ नहीं सकता मुझे, तो यदि आप मुझे पकड़ सकते हो तो मैं मान लूंगा बलराम है। तो नित्यानंद महाप्रभु ने बोला, ठीक है भागने का प्रयास करो, मैं पकड़ के दिखाता हूं तुम्हें। तो भागने लगे श्रीराम, अपना धोती वगैरह कर भागे बहुत तेजी से। तो कितना भागे, चार परिक्रमा कर दिया गिरिराज जी का श्रीराम ने, चार परिक्रमा। अब चार परिक्रमा कर गया तो श्रीराम सोचे, अब देखता हूं ये कहां रह गया, कहां गिर गया होगा पता नहीं। तो जैसे ही पीछे मुड़ा तो तुरंत बलराम जी ने हाथ मार दिया। तो यार ये कैसे संभव है, यार ये तो किसी में संभव नहीं है। तो बोला, बलराम तेरा ये बेस कैसे हो गया? बोले, ये है ना कलयुग का स्टाइल है हम लोग का पिचिंग करने का, तुम्हें पता नहीं है, है ना। तो बोला, मेरा कनाई कहाँ है? बोला, कनाई है ना वो नदिया में नदियारे निमाई हो गया, वो भी कनाई नहीं रहा, वो नदियारे निमाई हो गया, चलो तुम यहां से। तो बोला, चल रहा है? बोला, मैं नहीं जाऊंगा अभी उस लीला में, नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जाऊंगा ना तो मुझे तुम सबकी तरह ना माता के गर्भ में आना पड़ेगा, मैं नहीं जाऊंगा भाई, मुझे यहीं छोड़ दो। तो बोले, नहीं नहीं आपको जन्म लेने की जरूरत नहीं है, भगवान ने आपको बुलाया है, कृष्ण आपको बुला रहे हैं निमाई के रूप में, अब चलिए। तो चले, अब चलते गए। आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनिए। जब वो मार्ग में जा रहे थे तो श्रीराम की एक अंतरंग शक्ति है, उसको कहते हैं वृंदावती, शास्त्र में नाम आया वृंदावती करके, ये वृंदादीप का एक एक्सपेंशन है। तो श्री राम ने क्या किया, एक लोहे का बॉक्स लिया और उसके अंदर अपनी मतलब पत्नी को, जो उनकी पत्नी है शक्ति है, उसको पैक कर दिया छोटे से बॉक्स में और नदिया में बहा दिया, नदी में बहा दिया और चले गए। चले गए तो वहां पे देखा, यार सबका साइज छोटा छोटा है, इनका साइज बहुत बड़ा है। और महाप्रभु मिलके बहुत प्रसन्न हुए और रोने लगे, अभिराम ठाकुर सब द्वादश गोपालों को देख के, तुम लोग मुझे गुफा में छोड़ के आ गए हैं और तुम लोग यहाँ पे सब डांस कर रहे हो, ये क्या है? तो महाप्रभु बहुत रोए अभिराम को देख के, श्रीराम को देख के, और बहुत आलिंगन मिलन हुआ। लेकिन एक प्रॉब्लम सबको आ रहा था, उनका साइज बहुत बड़ा था, वो द्वापर युग के थे, सब कलयुग के थे। तो निताई और निमाई ये सोचने लगे कि कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा कीर्तन किया, कीर्तन में एक हाथ निमाई ने पकड़ा, एक निताई ने पकड़ा, और निमाई निताई पकड़ के घुमाए दोनों, किनको, श्रीधामा को, इतना घुमाए कि घूमते घूमते उनका साइज है ना छोटा हो गया। अद्भुत चरित्र है ये, अद्भुत लीला है ना। तो उनका जो साइज एकदम छोटा हो गया। तो ये जो ग्रंथ है अभिराम लीलामृत, उसमें वर्णन करते हैं, नित्यानंद डाकिवे तबे बलेन हासिया, आजी हैते डाके सबे अभिराम भाए। बोलते हैं कि नित्यानंद महाप्रभु हंसने लगे, जब उनका साइज बराबर हो गया, सबके जैसा हो गया, तो नित्यानंद महाप्रभु हंसने लगे और सबके सामने नित्यानंद प्रभु नाम दिया कि आपका नाम क्या होगा, अभिराम। क्या नाम होगा? अभिराम। यही नाम रखी लाम करिया निश्चय, आज से आपका यही नाम है। फिर आगे बोलने लगे, श्री राम आमा एक काबू भिन्न भेद नाई। क्या बोलने लगे कि मुझ में, मतलब नित्यानंद महाप्रभु में और श्री राम में कोई भेद नहीं है, और चेतन महाप्रभु में नित्यानंद प्रभु में कोई भेद नहीं है। ठीक है, इसका मतलब अभिराम चैतन्य एवे एक शरीर, इसका मतलब अभिराम का शरीर, श्री रामा का शरीर और चेतन महाप्रभु का शरीर एक ही है। पाश्चेत जानिवे तहा जय भक्त धीर, और जो कोई व्यक्ति इस रहस्य को जान लेगा वो भक्ति में क्या हो जाएगा, धीर हो जाएगा, गंभीर हो जाएगा। जो ये जान लेगा कि श्रीराम, अभिराम, निताई और निमाई ये तीनों एक ही है, वो क्या हो जाएगा, धीर। समझ में आया? तो ये ग्रंथ के द्वारा जो ग्रंथ लेखक हैं उन्होंने लिखा है ऐसा। तो ये हुआ। तो अभिराम गोपाल जब ये छोटे साइज के हो गए तो फिर उन्होंने अपना लीला स्टार्ट कर दिया। अब इनकी लीला इतनी अद्भुत है कि आप लोग सुनेंगे तो बोलेंगे सच में ऐसी लीला है इनकी। तो इसलिए आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान पूर्वक अगर आप सुनेंगे और श्रद्धा पूर्वक तो समझ में आएंगी। तो ये इन्होंने अपनी लीला शुरू कर दी। तो इन्होंने चेतन महाप्रभु ने आदेश दिया कि आप प्रचार करो, नित्यानंद महाप्रभु ने भी इनको कृपा किया कि आप प्रचार कीजिए। तो शक्य भाव में प्रचार करने लगे। ये शक्य भाव के भक्त हैं, समझने आना चाहिए। भक्त गण प्राय पांच रसों में भगवान की भक्ति करते हैं, शांत रस, दास रस और वात्सल्य रस और माधुर्य रस, है ना। तो ये पांच रसों में भक्त भक्ति करते हैं। तो इनमें जो ये अभिराम ठाकुर हैं ये साख्य रस के भक्त हैं। तो साख्य रस में भगवान के द्वादश गोपाल आते हैं, कितने, बारह सखा। तो हम भक्तों को, हम लोग ब्रज में निवास करते हैं तो हम लोग को इन बारह द्वादश गोपाल का नाम पता होना चाहिए। जैसे कि हम प्राय जब राधा श्याम सुंदर के सामने जाते हैं तो अष्ट सखियों का नाम लेते हैं। बहुत सारे लोग अष्ट सखियों का नाम पुकारते हैं, अष्ट मंजरियों का नाम भी पुकारते हैं, है ना, बहुत सारे भक्तों को देखा गया है। तो उसी तरह जब हम कृष्ण बलराम के सामने जाते हैं तो द्वादश गोपाल से भी प्रार्थना करनी चाहिए हमें, क्योंकि वो सब कृष्ण बलराम के संग में ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो अलग है उनसे, वो सब भगवान के साथ में ही रहते हैं। तो इनमें सबसे पहले जो गोपाल है, सबसे पहले जो गोपाल, उनका नाम है श्रीराम सखा, जो राधा रानी के बड़े भ्राता श्री हैं। उनके बाद आते हैं सुदाम सखा। चैतन्य लीला में श्रीधाम सखा अभिराम ठाकुर के रूप में प्रकट होते हैं और सुदाम सखा सुंदरानंद ठाकुर के रूप में आते हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। और तीसरे हैं वसुधाम सखा। वसुधाम सखा धनंजय पंडित बन के प्रकट होते हैं। सुबल सखा जो हैं गौरीदास पंडित बन के प्रकट होते हैं। और फिर आते हैं महाबाला। महाबाला जो है वो कमलाकर पिपलई बन के प्रकट होते हैं। और फिर आते हैं सुबाहु। सुबाहु जो है उदाहरण दत्त ठाकुर बन के प्रकट होते हैं। आप लोग ये सब कथाएं जैसे जैसे एक वर्ष के अंतर्गत आविर्भाव और त्रोभाव आते हैं तो आप लोग बहुत सारे इन आचार्यों की कथा सुनते हैं, है ना। तो ये सब द्वादश गोपाल के ही अवतार हैं। ये कृष्ण लीला से चैतन्य लीला में ट्रांसफर हो जाते हैं, बस इतना होता है, कुछ चेंजेस कुछ नहीं होता। फिर सुबाहु के बाद महाबाहु आते हैं। महाबाहु पुरुषोत्तम दास ठाकुर बन के आते हैं। और फिर उनके बाद स्तोक कृष्णा, स्तोक कृष्णा ये बन के आते हैं। मैं थोड़ा गलत हो गया, महाबाहु जो है वो महेश पंडित बन के आते हैं और स्तोक कृष्णा पुरुषोत्तम दास ठाकुर बन के आते हैं। फिर उसके बाद दाम सखा आते हैं, ये नागर पुरुषोत्तम के रूप में प्रकट होते हैं। दाम सखा के बाद अर्जुन सखा, ये अर्जुन वो नहीं जो द्वारका में प्रकट होते हैं, ये अर्जुन ब्रज में प्रकट होते हैं, ये द्वारका के अर्जुन से भिन्न है। और ये अर्जुन सखा बन के आते हैं परमेश्वरी दास ठाकुर। और इनके बाद लवंग सखा जो है ये प्रसिद्ध आचार्य कान्हा कृष्णदास के रूप में प्रकट होते हैं। और कुसुमासब जो भगवान के बारे में गोपाल है, कुसुमासब श्रीधर खोलाबेचा के रूप में प्रकट होते हैं। तो सभी भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि इन बारह महंत का नाम हमें याद होना चाहिए और बारह गोपाल का भी नाम हमें याद होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए दिन प्रतिदिन उच्चारण करने का, तो याद हो जाते हैं, है ना। तो इस तरह से ये बारह गोपाल का नाम जो सख्य भाव में जो भक्त रहते हैं उनको तो लेना ही चाहिए, जो ठाकुर जी को अपना सखा मानते हैं जो भक्तगण, उनको तो इनका नाम लेना अवश्य लेना चाहिए। और जो कोई भी रस में हो फिर भी उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए इनसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हाँ। कुछ लोगों का कुछ प्रॉब्लम होता है, वो बोलते हैं कि प्रभु जी हम तो माधुर रस में, तो हम सख्य रस वालों से कैसे प्रार्थना करें,
है ना। तो नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, पहले वो ललिता विशाखा से प्रार्थना कर रहे हैं, फिर सुबल आदि सखा से प्रार्थना कर रहे हैं, समझ में। इससे क्या होता है कि हम सब, हमें सबकी कृपा चाहिए, क्योंकि हमारा जो लेवल है ना अभी बहुत डाउन है, हम अभी हम हमारे विकारों से ऊपर नहीं आए, हम बात करते हैं बड़ी बड़ी, तो इसलिए है ना सबसे हमें कृपा की भीख मांगनी है, चाहे वो कोई भी भाव में हो। हरे कृष्णा। अभी ये कहना, इस किसके पीछे बहुत सारी कथाएं हो सकती है, लेकिन हम उधर नहीं जाएंगे। हरे हरे कृष्णा। तो अभिराम गोपाल ठाकुर प्रचार करने लगे, तो वो जो बॉक्स था जो मैंने आपको बताया था पहले, वो बॉक्स एक नदी के किनारे जाके लगा, एक नदी के किनारे लगा, और वहां पे गार्डन था जो बहुत साल पहले उजड़ गया था। उस गार्डन में किसी भी तरह का कोई भी पेड़ हरा भरा नहीं होता था, लेकिन जैसे वो बॉक्स वहां पर टच हुआ, तुरंत सारा जंगल हरा भरा हो गया। और वो गार्डन जो था एक काजी का था, एक काजी का अंडर में आता था, तो सारे लोगों ने जाके काजी को बताया, अरे सुनो ये जो गार्डन है ना उससे टच होते ही एक बॉक्स आया है, उससे टच होके हरा भरा हो गया है, तो चलो देखते हैं क्या है उस बॉक्स के अंदर। तो सबने खोला तो एक दिव्य कन्या की प्राप्ति हुई सबको। तो काजी ने जब वो कन्या को देखा तो काजी बोलता है, मेरे जीवन में मुझे कोई लड़की की प्राप्ति नहीं हुई, कोई पुत्री प्राप्त नहीं हुई मुझे, है ना, तो मुझे भगवान ने, अल्लाह ने क्या किया है, एक कन्या दे दिया है। तो कन्या को काजी ने उठा लिया और कन्या को अपनी पुत्री के रूप में अपनी पुत्री मान लिया उसको। लेकिन वो पुत्री देखते देखते बड़ी हो गई थोड़ी सी। वो पुत्री बोलती है, देखो आपने मुझे पुत्री माना ठीक है, लेकिन है ना मैं आपके जो उस राजमहल में जाके नहीं रहूंगी, मैं कहाँ रहूंगी, आपकी गौशाला में, और खाऊंगी क्या, स्वीट राइस बस, और कुछ नहीं, बस खीर खाऊंगी और घी के बने हुए आइटम खाऊंगी बस, बाकी मैं कुछ नहीं खाऊंगी। आप बताओ पुत्री बांध के रखना है कि नहीं रखना। काजी बोलता है यस, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी गौशाला बनाऊंगा, सारी व्यवस्था करूंगा तुम्हारे लिए। तो वो जो उनका नाम मालिनी है, तो वो जो मालिनी थी वो रहने लग गई गौशाला में, और इधर श्रीधाम प्रचार करते रहे अभिराम के रूप, अभिराम गोपाल प्रचार करते रहे। तो एक दिन अभिराम को मालिनी की याद आ गई कि यार मालिनी को मिले बहुत दिन हो गए, चलो जाके मिलता हूँ। तो गए नदी के उस पार पे, मतलब इस पार मालिनी उस पार अभिराम है, तो ऐसे कि हाथ, अरे आ जाओ बहुत दिन हो गए आपको। तो मालिनी देवी ने देखा कि मेरे प्रभु उस पार खड़े हैं। मालिनी देवी ने तुरंत जंप लगाया पानी में और इतना फास्ट चलेगी कि सब लोग देखते रह गए, इतने सारे बॉडीगार्ड थे, इतनी सारी दासियां थी, सब देखते रह गए कि इतनी फास्ट, ये तो आश्चर्य, ये तो कोई लड़की यहाँ की है ही नहीं, ये तो कोई स्वर्ग की कहीं और की लड़की हो गई। तो जाके वो पहुंच गई अभिराम के पास में। अब इधर काजी के घर में हल्ला हो गया कि यार वो एक साधु ने क्या किया है, वो तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लिया है। अब भाई साहब भागे, साहब तलवार लेके हथियार लेके सब। काजी ने बोला, अरे मेरी लड़की को कौन किडनैप करके ले जा रहा है, देखो जरा। और ये मालिनी और अभिराम बहुत प्रेम से बैठ के कीर्तन कर रहे हैं और भगवान के नामों का गुणगान कर रहे हैं, और कुछ नहीं है उनके पास काम, बस वही कर रहे हैं। और ये काजी आ रहा है ऐसे कर करके, काजी देखो गुस्सा हो रहा है, यार मेरी लड़की बड़ी शांत बैठी है, ये तो कोई मतलब कुछ वो भी नहीं कर रही है, मतलब कि यार कुछ हो सकता है, मतलब इसको कुछ इन्होंने कुछ नुकसान पहुंचाया हो। तो अभिराम भी एकदम शांत बैठे थे, सब शांत हो गया। तो काजी चिल्लाने लगा अभिराम के ऊपर, अरे तुम साधु का भेष बनाए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, दूसरे की कन्या को इस तरह से तुम किडनैप करते हो। अभिराम कुछ नहीं बोले, शांत है, सुनते रहे। मालिनी भी कुछ नहीं बोली। तो फिर अभिराम क्या किया, नदी देखे अभिराम। नदी में क्या था, जब कृष्ण ब्रज छोड़कर चले गए थे तो सारे गाल वालों ने क्या किया था, जो अपनी अपनी बांसुरियां जमुना में डाल दी थी उस क्रोध में, क्योंकि अब बांसुरी कौन बजाएगा, श्याम ब्रज में नहीं है कि मैंने बजाए श्याम ब्रज ने, एक भजन लिखा है भक्ति विनोद ठाकुर ने, अब बांसुरी कौन बजाएगा। तो सारे गोपालों ने क्या किया था, अपनी बांसुरी को यमुना में फेंक दिया था, और ये सारी बांसुरी मिल गई थी, चिपक गई थी एक दूसरे से बना के। तो ये बांसुरी है ना इतना बड़ा मतलब हो गई थी कि उसको उठाने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ेगी ऐसे। तो श्रीराम ने क्या किया, अभिराम ठाकुर ने क्या किया, वो नदी के पास गए, जो जो लकड़ी पड़ी थी, जो लकड़ी बन गई थी अभी पूरा, उसको ऐसे करके उठाया, उठा के मालिनी के सामने रखा, मालिनी के सामने रखा। अब सबको बोलते हैं, तुम लोग बहुत पावरफुल दिख रहे हो, बहुत बहुत तुम लोग ने मसल्स बनाई है, ठीक है इसको उठा दो, मालिनी को ले जाओ, इसको जो उठा देगा वो मालिनी को ले जाएगा, ले जाओ टेंशन मतलब। तो सबने प्रयास किया, किसी पे नहीं उठी, सबने मिलकर प्रयास किया तब भी नहीं उठी वो। तो उसके बाद में अब्राम ने बोला, मालिनी उठाओ इसको, अभी माली ने उठा के दे दिया और वो ऐसे ऐसे कुछ कुछ होल किए और बांसुरी बजाए। काजी बोला यार ये दोनों जगत के नहीं है, दोनों को प्रणाम किया, काजी निकल लिए। बोला ये हमारे मस्तिष्क से बाहर है, छोड़ दो, चलो भाई। तो काजी उनको वहीं विदा करके कन्यादान करके अपनी लड़की का चले गए। उसके बाद में सारे वैष्णव समाज में खबर फैल गई कि अभिराम ठाकुर ने क्या किया है, एक म्लेच्छ की कन्या को धारण किया है सब जगह। तो कई जगह पे थोड़ा सा ऐसा होता रहता था, कई लोग बोलते थे अरे वो साधु अरे बेकार है, वो मिलक्षी कन्या के साथ में रहता है। तो सब वैष्णव थोड़ा उनसे है ना दूरी रखते थे, है ना। लेकिन सबको पता था इनका प्रभाव क्या है, इनका प्रभाव क्या है। तो भक्ति रत्नाकर में वर्णन है कि ये जब प्रणाम करते थे किसी भी शालिग्राम शिलाखो या किसी भी विष्णु मूर्ति को, कृष्ण मूर्ति को, यदि वो सही मंत्रों के द्वारा प्रस्थापित नहीं हुई है, सही से पूजा अर्चना नहीं हो रही है, कोई शक्ति नहीं है विग्रह में, तो विग्रह चूर चूर हो जाती थी। जैसे प्रणाम करते थे खत्म। तो नवदीप में लोगों ने धंधा करने के लिए ना बहुत सारी विग्रह को स्थापित कर दिया था। तो कई लोग जाते थे ऐसे, तो नवराम जाते थे, प्रणाम करते थे, मंदिर खाली हो जाता था पूरा, सब भाग जाते थे सच में, क्योंकि प्रणाम करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा बोलते हैं कि जो 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 पावरफुल विग्रह थी, शक्तिशाली विग्रह थी, वही बची, बाकी तो सब अभिराम के प्रणाम से ही ना नष्ट हो गई। तो लोगों को पता भी था कि अभिराम ठाकुर बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन लोग बोल भी रहे थे अरे मिलक्ष की कन्या इस तरह से। तो ऐसा था, तो एक दिन अभिराम ठाकुर ने सोचा कि बहुत दिनों से हमने वैष्णवों को बुलाया नहीं है, तो चलो वैष्णवों को बुलाते हैं। तो सबको निमंत्रण दिया अभिराम ठाकुर ने, लेकिन कोई भी वैष्णव आया नहीं उनके घर में। क्यों? क्योंकि वो मिलक्ष की कन्या के साथ रहते हैं, ऐसी रूमर फैला दिया था लोगों ने, तो कोई भी नहीं आया। अभिराम को थोड़ा सा क्रोध आ गया, अभिराम मारने लगे पृथ्वी पे अपना पैर धाड़ धाड़ ऐसे करके। अब पृथ्वी बिछारी अभिराम के पैर से हालत खराब हो गई पृथ्वी देवी की, पृथ्वी देवी हिलने लगी धक धक, अब क्या करेंगे, हिलने लगी। तो निताई भी देखने लगे यार उनका भी घर हिल रहा है पूरा। सारे वैष्णव भी 64 परेशान हो गए, हो क्या रहा है। तो नित्यानंद प्रभु तुरंत चैतन्य महाप्रभु के पास गए, बोला प्रभु ये क्या है, ये कैसे हो रहा है सब। तो महाप्रभु बोले देखो तुम अभिराम ने तुम सबको बुलाया था ना, तुम लोग नहीं गए, अब सहन करो। अब मरो सब लोग। सारे 64 महंत इकट्ठा हुए, सब भागे अभिराम के घर में, सब लोग आए अरे अभिराम ठाकुर हम आ गए, टेंशन मत लो, हम लोग खाने आए सब कुछ, है ना। तो अभिराम ठाकुर ने सब महंतों का सत्कार किया और सबको चंदन इत्यादि लाके सबको अच्छे से सेवा किया। तो अब प्रसाद भी मालिनी देवी ने बहुत सारा बनाया था। अभिराम ठाकुर दिखाना चाहते थे मालिनी देवी कौन है। तो अभिराम ठाकुर ने बोला मालिनी देवी आप सब महंतों को क्या करो, प्रसाद सर्व करो। तो प्रसाद सर्व कर रही थी मालिनी देवी जब, तो क्या हुआ, हवा के झोंके से उनका सर का पल्लू गिर गया नीचे। क्योंकि भारतवर्ष में ये मर्यादा है, कोई भी जो पतिव्रता स्त्री होती है या जो विवाहित स्त्रियां होती हैं वो अपने सर को कवर करती हैं, है ना। तो उनका पल्लू गिर गया, आप दोनों हाथ में चढ़ता है, वो बड़ी लज्जित हुई कि यार देखो कैसे समय में मेरा मतलब अंग वस्त्र हट गया मेरे सर से। तो उनको थोड़ा सा लज्जा हुई। तो अभिराम ने सबके सामने बोला अरे तुम क्यों चिंता कर रही हो, अपने द्वार और प्रकट करो। तुरंत मालिनी देवी ने क्या किया, दोनों हाथ प्रकट किए पीछे से, दो हाथ में तो बर्तन है और दो हाथ पीछे से प्रकट किए और अपने साड़ी के पल्लू को ढक दिए ऐसे करके सर को। सब लोग महेंद्र आश्चर्य हो गए देख के, वाह। तो ये मालिनी देवी की शक्ति सब लोग को पता लगी। तो उस समय अभिराम ठाकुर ने ब्राह्मण को भी बुलाया था, लेकिन ब्राह्मण आए नहीं, मिलक्ष घर का कौन खाएगा, मिलक्ष कन्या के साथ में रहते हैं। तो सारे महंत चले गए, नित्यानंद महाप्रभु भी चले गए खापी के सब लोग। अब वो ब्राह्मणों के बारे में सोचने लगे, मालिनी देवी से बात करने लगे, हमने सब यहाँ के खानाकुल कृष्णनगर के सब ब्राह्मणों को बुलाया था लेकिन कोई आया नहीं। तो उन्होंने एक बिल्ली को बुलाया, उस बिल्ली का नाम था रांगा बिल्ली। क्या नाम था? रांगा बिल्ली, है ना। रांगा बिल्ली को बोला, रांगा बिल्ली तू एक काम कर, तो क्या कर, तू पहले है ना सब ब्राह्मणों के घर में जाके जो है ना वो खा ले, पूरा खा ले, ठीक है। फिर तुम मिलक्षों के पास जाना, जो मोमडन्स है ना, जो गाय को काटते हैं, सुअर को काटते हैं, उनके पास जाना। क्या करना, वो पूरा खा लेना तू, और वो खा के इनके बर्तन में उल्टी कर देना सब। इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर रांगा बिल्ली ने ऐसा ही किया, है ना। रांगा बिल्ली ने क्या किया, वो गई और उसने पूरा जो मांस वगैरह जो जहां पे होता था सब खा लिया और खा के जो ब्राह्मणों बर्तन साफ सूफ करके रखे थे बढ़िया से, और सारा वॉमिट कर दिया उसमें। तो जब ब्राह्मणों ने देखा यार बर्तन खोले तो देखा कि सब में मांस है, सबको आश्चर्य हो गया कि यार ऐसे कैसे हो गया। तो फिर सबने बोला कि देखो तुमको अभिराम ठाकुर ने बुलाया था, सारे मेहनतगण आए, नित्यानंद प्रभु आए, और तुम लोग अपने को बहुत मान समझते हो, चलो अभिराम ठाकुर के चरणों में सब लोग आए, क्षमा कर दो हमें, क्षमा कर दो हमसे गलती हो गया। तो अभिराम ठाकुर ने बोला अभी दोबारा जाके बर्तनों को देखना। तो बर्तन फिर से महाप्रसाद आ गया था उस बर्तनों में जो बचा हुआ था ना अभिराम ठाकुर के घर में, क्योंकि ब्राह्मणगण आए नहीं तो क्या करेंगे। तो वो बोला कि अभी तुम घर पे जाके तुम्हें प्रसाद मिल जाएगा, टेंशन मतलब। तो फिर वो गए, उन्होंने देखा कि वहां पे प्रसाद है उसमें सच में। तो वो लोग भी समझ गए कि अभिराम ठाकुर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये बहुत दिव्य व्यक्ति है ऐसा। तो और कथाएं आती है इसमें लीलामृत में, अभिराम लीलामृत में, कि कैसे उन्होंने नित्यानंद महाप्रभु के पुत्रों को समाप्त कर दिया, सात पुत्रों को। नित्यानंद महाप्रभु की जो पत्नी थी उनका नाम था वसुधा माँ और जानवा माता। तो जानवा माता का तो कोई वर्णन नहीं आता संतान प्राप्ति का, लेकिन वसुधा देवी का वर्णन आता है। तो वसुधा देवी ने पहले पुत्र को जन्म दिया। जब पहले पुत्र को जन्म दिया तो नित्यानंद बहुत प्रसन्न हुए, सारे आचार्यों को बुलाया, सारे भक्तों को निमंत्रण दिया, अभिराम गोपाल को भी निमंत्रण दिया, आओ मेरे पुत्र का जन्म हुआ है ना, मैं सबको प्रसादम के लिए बुलाया सबको। तो फिर सब लोग गए। तो अभिराम ठाकुर सोच रहे थे थोड़ा चेक करता हूँ ये सच में ये जो पुत्र है ये पावरफुल है कि नहीं है, थोड़ा शक्तिशाली है कि नहीं, क्योंकि नित्यानंद का पुत्र है तो शक्तिशाली तो होना चाहिए। तो फिर प्रणाम किया, बच्चा थोड़ा ऐसे करते करते खत्म। फेस्टिवल हो रहा है, बच्चा खत्म। सोचिए वसुधा जानवा तो बहस हो गई दोनों, क्या करें, अभिराम गोपाल का प्रणाम नहीं सहन कर पाया, खत्म। फिर दूसरा बच्चे ने जन्म लिया दो साल एक साल के बाद, तो फिर क्या कहते हैं अभिराम गोपाल आए, फिर से प्रणाम किया, फिर से खत्म। नित्यानंद बहुत टेंशन में हो गए। ऐसे करके वर्णन आता छह सात बच्चों को उन्होंने भगवत धाम पहुंचा दिया। अब नित्यानंद सोचने लगे कि अब मेरे जो पुत्र जन्म लेगा तो मैं क्या करूंगा, इस अभिराम को यहां आने नहीं दूंगा किसी भी तरह से, नहीं तो ये मेरे पुत्र को फिर समाप्त कर देगा। तो उन्होंने सारे बोटमैन को बोल दिया कि देखो ये अभिराम व्यक्ति है मोटा तगड़ा, ऐसे करके तुम लोग सब जानते हो पता नहीं, तो पहले पूछना अभिराम नाम है क्या, अगर वो कुछ बताए थोड़ा सा तो तुम क्या करना सब नाव डुबा देना अपने, समझ में आया ना, सब नाव डुबा देना। हाँ तो उनको निमंत्रण ही नहीं दिया इस बार, नो इनविटेशन, नहीं तो फिर से हरी बोल हो जाएगा क्या करें। तो निमंत्रण नहीं दिया। तो खाना कुल कृष्णनगर जहां पे अभिराम ठाकुर रहते हैं, अभिराम ठाकुर का श्रीपाठ है, तो वहां पे मालिनी देवी और ये दोनों बकरेश्वर पंडित की सेवा कर रहे थे। वहां पर बकरेश्वर पंडित पधारे थे। तो बकरेश्वर पंडित ने बताया, अरे आपको पता है नहीं कल आप चल रहे हो क्या। बोला कहां, अरे नित्यानंद महाप्रभु का पुत्र ने जन्म लिया है और वो बहुत बड़ा फेस्टिवल करने जा रहे हैं। तो बोले हमें तो इन्विटेशन नहीं दिया इस बार, हमको तो दूर कर दिया। अरे तुम गोपाल हो, गोपाल के लिए क्या इन्विटेशन की जरूरत। अरे नहीं नहीं नहीं, बिना इन्विटेशन के जाना ठीक नहीं है। तो मालिनी देवी बोलने लगी, अरे मित्र में क्या इन्विटेशन, जाना चाहिए तुम्हें। तो दोनों की बात को स्वीकार करके अभिराम गोपाल तैयार हो गए, ठीक है जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। तो जैसे ही आए अभिराम गोपाल ठाकुर खरदा के नजदीक, नित्यानंद महाप्रभु का जो गाँव था वो खरदा में रहते थे, तो गंगा के उस पार थे। तो उन्होंने देखा तो जो नाविक थे वो पूछने लगे, भाई साहब आपका नाम क्या है। तो उन्होंने बोला क्यों नाम क्यों पूछ रहे हो। तो उन्होंने बोला हमें नित्यानंद ने मना किया है कि कोई भी अभिराम नाम का व्यक्ति आए तो उसको बिठाना नहीं है। तो अभिराम ऐसे करने लगे। ओ तो ये नाविक समझ गए कि यही अभिराम व्यक्ति है। क्योंकि इस तरह से देख रहे हैं। तुरंत नाविकों ने क्या किया, सारी नावें ना डुबा दी पानी में, कोई नहीं लेके जा रहा है उनको। अभिराम गोपाल सोचने लगे यार ये बड़ा अजीब है, कोई नहीं लेके जा रहा है। अभिराम ठाकुर ने अपना गमछा जमुना में गंगा में डाला, ऊपर उसके ऊपर बैठ गए, गमछा तैरते तैरते गया। सोचिए ये अभिराम ठाकुर है, वो गमछा तैरते तैरते गया और इस पार आ गए। अब इस पार आ गए तो पूरा हल्ला फैल गया चारों तरफ। नित्यानंद महाप्रभु के घर में खबर पहुंच गई, अरे अभिराम आ गए, अभिराम आ गए, अभिराम आ गए। नित्यानंद बहुत टेंशन में आ गए। जानवा माता ने बच्चों वसुधा ने और जानवा ने बच्चों को छुपा दिया एकदम। अब क्या करें, अब भाई बड़े मेहनत है, बड़े सीनियर गोपाल है, क्या करेंगे। तो नित्यानंद तुरंत 64 मेहनतों को लेके गए, क्योंकि भाई बुलाया नहीं और थोड़ा भी अगर सत्कार नहीं करेंगे तो और दिक्कत आ जाएगा। तो गए लेके, तो सबने जाके प्रणाम किया, अभिराम गोपाल को खूब मिले सब बढ़िया से ऐसे करके। तो बोलते निताई तूने बताया नहीं यार इतना बड़ा फेस्टिवल कर रहा है, मैं तो इधर से गुजरा था, मैं तो आ गया ऐसे ही देख के कीर्तन की आवाज सुनी मैं आ गया। अरे नहीं नहीं वो मैं तुम्हें बताना भूल गया था, मेरा पुत्र ने जन्म। अच्छा आपके पुत्र का जन्म है, अच्छा अच्छा तो मुझे बढ़िया दावत मिलने वाली है यहाँ पे। अरे हाँ आपको बहुत दावत मिलेगी, आप चिंता आप पधारिए। पधारे अभिराम गोपाल पधारे, पधार के नित्यानंद ने सोचा कि अच्छे सेवा करने क्या पता प्रसन्न हो जाए इस बार, प्रणाम ना करे। तो नित्यानंद महाप्रभु ने बहुत प्रसाद उनको जितना प्रसाद बनाया था सब खा गए अभिराम गोपाल, किसी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। नित्यानंद प्रभु को सर दर्द हो गया, बाप रे, बोलने लगे अरे तुम्हें पता है तुम कौन हो, तुम गोपाल हो, तुम्हें याद है जमुना के तट पे हम लोग मिल बांट के खाते थे, टिफिन में प्रसाद होता था आधा तुम लेते थे आधा हम खाते थे, तुम्हें याद है कि नहीं याद है, प्लेन भोजन का याद है कुछ? अभिराम बोले हाँ सब याद है, सब याद है मुझे। तो ये क्या सब खा गए, सारे महंतों के ही तुम खा गए? बोले मैं गोपाल हूं, गोपाल आमार जाति, मेरी गोपाल की जाति है, और गोपाल जितना लेता है ना उसे डबल देता है, जाओ चेक करो जाके अपने घर में, जितना तुमने मुझे दिया है ना उसे डबल तुम्हें मिलेगा, जाके देखो। तो निताई गए देखो यार सच में सारे भक्तगण प्रसन्न हो गए यार, कल से भूखे बैठे कुछ नहीं खाया सच में। तो फिर सबने प्रसाद लिया, अब अभिराम ठाकुर ने बोला अरे अरे भाई अपने पुत्र का दर्शन तो करा दो। बाप रे तब तो बहुत बोले नहीं नहीं मैं तो बस शक्ति देखने आता हूँ बस, कि भाई आपका पुत्र है आप बलराम हो और बलराम जी का पुत्र कोई साधन हो सकता है क्या? संभव ही नहीं है, वो साधारण नहीं हो सकता किसी तरह से, तो प्लीज लेके आओ मेरे सामने। अब जानमा अपनी उनकी तरफ देख रही है, वसुधा की तरफ, वसुधा उनकी तरफ देख रहे हैं, क्या करें? भगवान गोपीनाथ को प्रार्थना करने लगे, हे गोपीनाथ बचाना इस बार। सब महंत भी प्रार्थना करने लगे क्या करें, सबके सामने लेके आए बालक को, और बालक हंस रहा है, उन्हें कोई भी मतलब वो नहीं है। तो अभिराम गोपाल ने देखा तो वो भी मुस्कुराए कि देखो पहला बालक देखा जो हंस रहा है, बाकी तो सब सुनसान थे। तो बालक को प्रणाम किया कुछ नहीं हुआ, और बालक हंसने लगा। दूसरी बार प्रणाम किया तब भी कुछ नहीं हुआ, फिर तीसरी बार प्रणाम किया तब भी बालक हंस रहा है। तो सब लोग जोर से हरी हरी बोल बोलने लगे, और वो हरी बोल। तो अभिराम गोपाल बोलने लगे ये ना देखी छे गौर, देखे आर बार पुनर्बार से ही गौर अवतार। वो बोलते हैं कि जिन लोगों ने चैतन्य महाप्रभु का दर्शन नहीं किया, नहीं करेंगे, जो लोग आगे आएंगे थोड़े दिनों के बाद, वो लोग इस बालक को देख के महाप्रभु का दर्शन करेंगे। और ये बालक ये कोई साधारण बालक नहीं है, भगवान क्षीरोदसाई का अवतार है, क्षीरोदसाई स्वयं बलराम के घर में प्रकट हुए हैं, और वहीं पे उन्होंने नामकरण किया। ये जो नाम दिया अभिराम ने, नाम दिया उनका, नाम क्या दिया? वीरभद्र गोसाई। क्या नाम दिया? वीरभद्र, क्योंकि वीर हैं और बहुत सुंदर थे, इसे नाम क्या दे दिया? वीरभद्र। और वहीं पर वीरभद्र अष्टकम की रचना कर दी अभिराम गोपाल ने, वहीं पे उसी सबके सामने, सारे महंतगढ़ प्रसन्न हो गए, सब लोग को प्रसन्न कर दिया अभिराम गोपाल ने। सोचिए तो एक बालक ये हुआ, और नित्यानंद महाप्रभु की दूसरी एक और संतान हुई गंगा मैया, स्वयं गंगा देवी भगवान नित्यानंद की पुत्री बनी। तो जब गंगा देवी का जन्म हुआ, अब लाली का जन्म हुआ लड़की का, अभिराम गोपाल फिर से आए, फिर से माता जानवागा डर गई यार, पहले तो बालक थे तो बच्ची है, इसमें इतनी शक्ति कैसे होगी पता नहीं। तो लाओ बालिका को सामने लाओ, मैं प्रणाम करके देखता हूँ, भाई निताई की लड़की है मतलब पावरफुल हो गई है ना। तो प्रणाम किया तो बच्ची हंसने लगी तो उन्होंने क्या बोला कि ये तो कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाली है सबको, ये तो बहुत महान है। तो 100 स्तुतियां की अभिराम अभिराम गोपाल ने, अभिराम लीला रत्न वर्णन आता है 100 श्लोक गाए गंगा माता की स्तुति प्रशंसा में। तो ऐसे ये लीलाएं आती हैं अभिराम गोपाल की। तो एक दिन नित्यानंद महाप्रभु खाना कृष्णकुल नगर गए, खानाकुल कृष्ण नगर गए है ना, वहां पे गए तो सब सब जो अभिराम गोपाल के जो शिष्यगण थे, सब शिष्यगण ने उनका स्वागत किया, उनका अनेक प्रकार से वंदनाएं की, स्तुति की नित्यानंद महाप्रभु की। तो नित्यानंद प्रभु बोलने लगे हमने सुना है अभिराम गोपाल में बहुत शक्ति है, हमको पता है बहुत शक्तिशाली है, तो थोड़ा शिष्यों की शक्ति भी चेक कर लेते हैं इस शिष्यों में भी थोड़ी शक्ति दी है कि नहीं दी अभिराम गोपाल ने। तो सब शिष्य नतमस्तक थे नित्यानंद महाप्रभु के सामने। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं सुनो मुझे एक प्रहर के अंदर यानी कि ढाई घंटे के अंदर मुझे जगन्नाथ जी का महाप्रसाद चाहिए, लेके आओ जाओ। अब भाई बंगाल से जगन्नाथपुरी कितना दूर है? बहुत दूर है, पैदल चलने में कितने दिन लगते हैं? 2-3 महीने लग जाते हैं है ना। बोले एक प्रहर के अंदर मुझे जगन्नाथ का प्रसाद चाहिए। सब आश्चर्य हो गए, अरे अब क्या करें? हाँ, अब दादा गुरुजी ने ऐसा ऐसा सेवा दिया है, कर ही नहीं पा रहे कोई, सब टेंशन में। अब कुछ शिष्यों ने मिलके अपने गुरु को प्रार्थना किया, ये अभिराम गोपाल गुरु महाराज कुछ करें हमारे लिए, नहीं हम नष्ट हो जाएंगे आज, अगर हम नित्यानंद गुरु की सेवा नहीं कर पाए, उनके आदेश का पालन नहीं कर पाए तो नष्ट हो जाएंगे। अब वहीं पे अभिराम गोपाल प्रकट हो गए, वहीं पे बोला टेंशन क्यों ले रहे हो तुम लोग, अरे उधर है ना नित्यानंद गुरु ने ऐसा आदेश दिया, आदेश दिया है ना, ठीक है मैं तुम्हें पंख दे देता हूं, लो पंख, उनके पंख लगा दिए, उड़ो, उड़ के जाओ अभी, सीधा जाना और जो किचन के जो इंचार्ज है ना उधर जगन्नाथपुरी में, उनको बोलना और बोलना कि नित्यानंद महाप्रभु ने प्रसाद मंगाया है, फटाफट बांध के देंगे तुम्हें। वो जो भक्त थे उनका नाम श्रीनिवास करके नाम आता है, ऐसे ही कुछ नाम आता है, मुझे स्मरण नहीं है। तो उन्होंने, उनको पंख आ गए और उन्होंने उड़ान भरी, कहां पे सीधा लैंडिंग किया, जगन्नाथपुरी में, और पुजारी को मिले और बोले पता है नित्यानंद महाप्रभु ने प्रसाद मंगाया, फटाफट पैक करो। उन्होंने ढेर सारा प्रसाद पैक कर दिया और एक प्रहर के अंदर अंदर प्रकट हो गए। सोचिए आप, एक प्रहर के अंदर प्रकट हो गए, नित्यानंद प्रभु के सामने प्रसाद हाजिर कर दिया, देखिए नित्यानंद प्रभु, जगन्नाथपुरी का प्रसाद। नित्यानंद प्रभु हंसने लगे, ये यार सच में शक्ति प्रदान किया है ने। ऐसी ऐसी लीलाएं आती हैं, बहुत सारी कथाएं अभिराम गोपाल की। एक कथा आती है जो हमें बहुत शिक्षा प्रदान करने वाली है। अभिराम गोपाल के एक शिष्य हुए, उनका नाम तिलक रामदास या कोई कहता है गोपीनाथ दास। ये जो ग्रंथ लिखा है अभिराम लीलामृत, ये तिलक रामदास जी ने लिखा है। जब अभिराम ठाकुर नित्य लीला स्मरण कर लिए, विग्रह के अंदर समा गए, अपनी विग्रह के अंदर समा गए, तो ये बहुत दुखी थे तिलक राम जी। तो इन्होंने प्रार्थना किया कि प्रभु आपने इतनी लीलाएं की और मैंने तो उन लीला को देखा नहीं है, है ना, तो मुझे वो लीला स्मरण कैसे हो, मैं उन सब लीला को लिखना चाहता हूं। तो वो ऐसे ऐसे होते होते उनको नींद आ गई। जब निद्रा आ गई तो अभिराम गोपाल प्रकट हुए और अभिराम गोपाल ने क्या किए, अपने चरण उनके सर पे रख दिए और चरण जैसे सर पे रखे सारी लीला याद आ गई उनको, तिलक राम जी को, और उन्हें क्या किया, अभिराम लीलामृत करके ग्रंथ लिख दिया पूरा, है ना। तो ऐसे ही भक्त का नाम आता है। तो ये भक्त थे, गोपीनाथ की सेवा करते थे। जो खानाकुल कृष्णनगर है, पिछले कुछ महीने पहले मैं वहां पे गया था खानाकुल कृष्णनगर में। ये मायापुर से थोड़ा दूर है, थोड़ा 150 किलोमीटर दूर है मायापुर से। तो मैं वहां पे गया था, पहले तारकेश्वर जंक्शन जाना होता है, फिर एक हमारा इस्कॉन है परम पूज्य भक्ति चारु महाराज जी के द्वारा, जो उनके भक्तगण है वो चलाते हैं इस्कॉन अत्तरा, वहीं से 20 किलोमीटर की दूरी पे है, अगर कोई भक्त को जाना है तो इस तरह से जाना चाहिए। तो वहां पे खानाकुल कृष्णनगर में करीब 32 मंदिर है उधर, जो राजा लोग ने बनवाए थे और वो अभिन्न वृंदावन है। और वहां पे एक ऐसा मंदिर है जिसको विश्वकर्मा ने आके बनाया था, जिसके अंदर 108 दरवाजे हैं, अद्भुत मंदिर है वो। तो वहां पे बहुत समय पहले गोपीनाथ की स्थापना हुई थी, दिव्य गोपीनाथ की विग्रह की स्थापना हुई थी, लेकिन मुगलों के भय से और जो विदेशी शक्तियों के भय से आक्रमण हुए तो उस विग्रह को दफना दिया डिवोटीज ने, गोपीनाथ के विग्रह को। तो जब खानाकुल कृष्णनगर में ये आए पहली बार अभिराम गोपाल, तो वो बकुल के वृक्ष के नीचे बैठ गए थे। आज ही वो बकुल का वृक्ष है जिसको एक सन्यासी ने जला दिया था, फिर से क्या कहता है अभिराम गोपाल ने उसको हरा भरा कर दिया, तो वो वृक्ष आज भी है। तो गोपीनाथ उनके स्वप्न में आए और बोले अभिराम गोपाल तुम मुझे ढूंढ रहे हो ना, मैं इस जमीन के अंदर हूं, मैं ना ये पहले एक सरोवर था अभी सूख गया है ना, तुम इसको मुझे यहां से प्रकट करो। तो अभिराम गोपाल ने उसको उनको प्रकट किया गोपीनाथ जी को वहां से। तो गोपीनाथ जी प्रकट हो गए, बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ और उस कुंड का नाम पड़ गया राम कुंड। बहुत सुंदर जल है उसके अंदर राम कुंड, जहां से अभिराम गोपाल ने गोपीनाथ जी को प्रकट किया था। तो गोपीनाथ जी वहां पे सेवा होने लगी गोपीनाथ जी की। आज भी बहुत सुंदर विग्रह है गोपीनाथ जी की वहां पे, आप लोगों को अवश्य जाना चाहिए। जब भी आप मायापुर की यात्रा करें तो एक बार उस जगह पे जाना चाहिए। एग्जैक्ट जैसे वृंदावन में आप फील कर रहे हो, सेम फीलिंग आपको वहां पे आएगी, सेम। तो वो भक्त थे, वो सेवा कर रहे थे अभिराम गोपाल गोपीनाथ जी की विग्रह के। तो वहां पे एक कन्या आती थी, एक युवती आती थी गोपीनाथ की सेवा के लिए, और गोपीनाथ जी के लिए पुष्प इत्यादि लेके आती थी वो। तो एक दिन क्या हुआ, ये पुजारी जो भक्त थे अभिराम गोपाल के, जो डिसाइपल थे, इस सेवा कर रहे थे, तो एक बार इनकी दृष्टि वो लड़की पे पड़ी जो सेवा करने आती थी गोपीनाथ जी की। तो उनसे थोड़ा आकर्षित हो गई है। तो ये सेवा कर रहे थे तो उस युवती की तरफ देखने लगे, तो देखने लगे तो युवती थोड़ा सा डर गई, तो युवती भी वहां से चली गई। और इन्होंने क्या किया, ये गोपीनाथ की सेवा को छोड़ दिया और ये सीधा जिधर जिधर युवती जा रही है, लड़की जो जा रही थी उसके पीछे चलने लगे। और उसके पीछे चलने लगे तो उसके घर तक पहुंच गए, तो वो लड़की डर के मारे दरवाजा लॉक करके घर में पैक हो गई, क्योंकि उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया है ना। तो उसके माता पिता थे घर में, तो वो तो पहचानते थे उनको, बोले कि जी महाराज बताइए क्या हो गया। बोला इस घर में जो लड़की गई है मैं उसे देखना चाहता हूँ, मैं उसे एक बार देखना चाहता हूँ। तो लड़की को दिखाया, ये हमारी लड़की है, कोई दिक्कत नहीं है। लड़की को देखा उन्होंने, लेकिन वो जब देख के लौट के आ रहे तो अपने आप को बहुत धिक्कारने लगे कि मैंने एक मल मूत्र के शरीर को देखने के लिए मैंने गोपीनाथ की सेवा छोड़ दी, धिक्कार है मेरी आंखों पे। और उन्हें क्या कि अपनी आंखें फोड़ ली दोनों, अब आंखें दोनों फूट गई उनकी, तो वो देख नहीं सकते हैं। और बहुत रुदन करने लगे, बहुत रुदन किया उन्होंने कि हाय मैं कितना बेकार हूं कितना। तो कुछ समय के बाद अभिराम गोपाल पधारे कान्हाकुल कृष्णनगर में। तो अभिराम गोपाल को जब ये घटना पता लगी तो वो उनके चरणों में गिर गए, अभिराम गोपाल के चरणों में गिर गए उनके डिसाइपल, और बोलने लगे प्रभु मैं बहुत नीच हूं, बहुत पापी हूं, मैंने है ना गोपीनाथ की सेवा छोड़ दी एक स्त्री को देखने के चक्कर में, अब मुझे इतना दुख हो रहा है कि मैं गोपीनाथ की सेवा कैसे करूं, मैं गोपीनाथ को देखे बिना नहीं रह सकता, मैं आत्महत्या करना चाहता हूं प्रभु, क्योंकि बिना गोपीनाथ की सेवा के जीना बेकार है मेरा जीवन, मैं प्राण छोड़ना चाहता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार में, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। तब राम गोपाल बोले सच में तुम गोपीनाथ की सेवा करना चाहते हो? बोले हाँ। तो करो ना, कौन मना किया है, लेकिन प्रभु बिना आंखों के देखे कैसे सेवा हो सकती है। तब राम गोपाल ने क्या किया, बोला कि देखो ये मैं तुम्हें आंखें देता हूं और आंखें इतना ही देखेंगी जितनी तुम गोपीनाथ की सेवा तक करोगे, बस उसके बाद आंखें देखना बंद हो जाएंगी। जितना समय तुम्हें गोपीनाथ की सेवा में लगेगा उतना ही तुम देख पाओगे, उसके बाद तुम्हारा देखना बंद हो जाएगा। समझ में आपको, स्पेशल कृपा मतलब जो सेवा का समय उतना ही उनको दिखता था, बस उतना ही वो फूल वगैरह सब कुछ करके, और जैसी सेवा खत्म उनको दिखना बंद, बस भजन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो ये अभिराम गोपाल है। तो बहुत अभिराम गोपाल जब चैतन्य महाप्रभु चले गए नवदीप धाम से जगन्नाथपुरी से, तो नित्यानंद महाप्रभु चले गए, तो उनके बाद अभिराम गोपाल ने बहुत प्रचार किया। और अभिराम गोपाल के पास दो चीजें होती थी, यही मैं बता रहा हूँ आपको बस। एक थी उनके पास बांसुरी, कितने लोग उठाते थे उसको, 32 लोग उठाते थे, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है और गौरदास देव जी का वर्णन है। और एक उनके पास होती थी चाबुक, कोड़ा, जो हम लोग पशुओं पे यूज करते हैं, बैलों पे यूज करते हैं। तो ये स्पेशल चाबुक थी और इसका नाम क्या था, जयमंगल। क्या नाम था? जयमंगल नाम की चाबुक थी। और ये चाबुक किस लिए यूज करते थे, वो कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए यूज करते थे। और जिसमें चाबुक मार दे कसके एक बार, उसको कृष्ण भक्ति मिल जाती थी। सोचिए आप लोग, मैंने वो श्लोक भी लिखा है यहाँ पे, हाँ कहाँ गया, घोरे रे चाबुक नाम जय मंगल, तहा मारी करे लोक प्रेम मय भेबल। मतलब ये जो घोर चाबुक था इसका नाम क्या था, जय मंगल, तहा मारी करे लोक प्रेम मय भेबल। और जिस भी व्यक्ति को मार देते थे वो प्रेम में पागल हो जाता था, कृष्ण 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 कह कह के रोता था, डांस करता था, ऐसी चाबुक थी। सोचिए आप, तो जब श्रीनिवास आचार्य को नित्यानंद महाप्रभु के दर्शन नहीं मिले, महाप्रभु के दर्शन नहीं मिले, तो जानवा माता ने बोला कि एक व्यक्ति है अभी भी खानाकुल कृष्णनगर में, उसका नाम क्या है, अभिराम, उनके दर्शन करने जाओ आप। उनके दर्शन करने के लिए गए तो उन्होंने मना कर दिया, अभिराम गोपाल ने मना कर दिया, मैं दर्शन नहीं दूंगा, जाओ जाओ, मुझे दर्शन नहीं देना किसी को, मुझे क्या पता श्रीनिवास कौन है, श्रीनिवास आचार्य जो बाद में गोपाल भट्ट गोस्वामी से इनिशिएशन लिए। तो उनको उन्होंने अपने शिष्य को बोला कि मैं परीक्षा करना चाहता हूं श्रीनिवास की, उनको 8 कॉइन दिए अपने शिष्य को, बोले कि ये 8 कॉइन किसको दे देना, आप उनको दे देना, श्रीनिवास आचार्य को दे देना, ठीक है। तो श्रीनिवास आचार्य को 8 कॉइन दे दिए उन्होंने। तो श्रीनिवास आचार्य ने क्या किया उन 8 कॉइन का, उन्होंने बहुत सारा सब्जियां लेके आए और उनसे ठाकुर जी के भोग के लिए प्रिपेयरिंग किया, जहां पे वो रुके थे दूसरे गांव में। तो ठीक उसी समय उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा जाके कि तुम लोग सब जाओ, ठीक उसी समय जाना जब वो भोग लगा रहे हो ठाकुर जी को, उसी समय जाना। तो सब लोग गए, जब सब लोग गए तो अभिराम गोपाल को, श्रीनिवास आचार्य को पता लगा कि अभिराम गोपाल के सब डिसाइपल लोग आए, तो उन्होंने सबको नतमस्तक प्रणाम किया और सबको प्रसाद के लिए बोला। तो प्रसाद तो थोड़ा सा था लेकिन सब बहुत सारे लोग हैं तो कैसे होगा, तो उन्होंने सबको प्रसाद सर्व किया और जैसे ही सबने प्रसाद खाया उन सबके दिव्य विकार आ गया। सब लोग कृष्ण 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 कहके नाच लगे गाने लगे और सब लोग भागते भागते अपने गुरुदेव के पास आए। गुरुदेव अच्छा किया आपने हमें भेज दिया, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो गई। बोला क्या हो गया? अरे श्रीनिवास के हाथ का प्रसाद खाके हमको प्रति क्षण कृष्ण को हम भूल नहीं पा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अपनी पत्नी को याद करूं लेकिन नहीं याद कर पा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ अपने बच्चे को याद करूं नहीं कर पा रहा हूँ। कोई काम धंधा करूं नहीं कर पा रहा हूँ। हमें क्या हो गया है? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो गई। बुलाओ श्रीनिवास को मेरे सामने लेके आओ। तुरंत ऐसा भक्तगण उनको बोले कि आपको अभी अभिराम गोपाल बुला रहे हैं। अभिराम गोपाल के सामने आके नतमस्तक किए, साष्टांग प्रणाम किए। अभिराम गोपाल ने अपना चाबुक निकाला और एक चाबुक मारा खस के श्रीनिवास आचार्य में और श्रीनिवास प्रेम से बेभूल हो गए, जोर से नाचने लगे गाने लगे। फिर दूसरा मारा और प्रेम उदित हो गया उनके अंदर और जब तीसरा मारा कृष्ण कृष्ण कह के बेहोश हो गए। और जब चौथा मारने जा रहे थे ना, मालिनी देवी ने हाथ पकड़ लिया ऐसे करके, नहीं ये बच्चा है मर जाएगा ये, इतना ठीक है इतना कृष्ण प्रेम ठीक है। तो इस तरह से अभिराम गोपाल ने प्रचार किया और एक्चुअली समय हो गया, समय ओवर हो गया, 9:05 हो गया, हमें पता भी लगा समय का। तो बहुत सारी कथाएं हैं जो बाकी रह गई हैं। कोई नहीं, हमें 9 खत्म करने के लिए बोला गया है। श्री अभिराम गोपाल ठाकुर की। किसी के मन में कोई प्रश्न है, कोई दुविधा तो आप हमें पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है किसी के मन में? मेरे ख्याल से कोई आपका प्रश्न है, बोलिए माता जी, माइक दे दीजिए। एक मिनट माता जी, कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं सबके लाभ के लिए।
ये जो श्री अभिराम दास जी थे, ये वो श्री दामा बता रहे, श्री दामा थे जी। ये राधा रानी के भाई थे या वही थे?
वही है। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। श्री अभिराम गोपाल ठाकुर की।